Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Thank you.
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupad, Jaya Prabhupad, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण श्लोक संख्या 11। षष्ठम षष्ठम अत्रेह अपत्यत्वं वृतः प्राप्तः अनसूयया आन्वीक्षिकीं अलर्काय प्रह्लाद आदिभिः आदिभ्यः ऊचिवान् षष्ठम् अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रेरपत्यत्वम् प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् माताजी षष्ठम् अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया क्षीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रेरपत्यत्वम् आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् षष्ठम् छठवां अत्रेः अत्रिका अपत्यत्वम् पुत्रत्व वृतः मांगने पर प्राप्तः प्राप्त किया गया अनसूयया अनसूया से आन्वीक्षिकीम अध्यात्म विषय पर अलर्काय अलर्क को प्रहलाद आदिभ्यः प्रहलाद तथा अन्यों को उचिवान बताया। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। छठे पुरुष अवतार, छठे पुरुष अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसूया द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु, हयहय आदि को अध्यात्म विषय का उपदेश दिया। तात्पर्य। भगवान ने ऋषि अत्रि तथा अनुसूया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मांड पुराण में सेवारत पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, हयहय आदि को विषय रूप से इसका उपदेश दिया। अनुवाद दोहराइए। छठे पुरुष अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसूया द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु, हयहय आदि को अध्यात्म विषय का उपदेश दिया। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध के इस तीसरे अध्याय में सर्वप्रथम सूत गोस्वामी ने तीन पुरुष अवतारों का वर्णन किया था, कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु। और इसके बाद उन्होंने 22 अवतारों का उल्लेख किया है और संक्षिप्त रूप में उनका वर्णन भी किया है। आपको याद होगा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे। उनमें से 2 प्रश्न भगवान कृष्ण के अवतारों के संबंध में थे। तो अब इन 22 अवतारों का उल्लेख करके और संक्षिप्त में उनका वर्णन करके सुत गोस्वामी उन ऋषियों के 4थे और 5वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वैसे इसके पहले सर्वप्रथम सुत गोस्वामी ने उन अवतारों का वर्णन किया क्रमशः, जैसे जैसे उनका प्राकट्य हुआ है वैसे वैसे उनका वर्णन उन्होंने किया। जो चतुष्कुमार हैं, 4 पुत्र हैं, उसके बाद वराहदेव, फिर नारद मुनि, नर नारायण ऋषि, भगवान कपिल और 6ठे अवतार हैं दत्तात्रेय। वैसे इन 22 अवतारों में हमें जानना है कि श्रेणियां अलग अलग हैं। वैसे भगवत तत्व की श्रेणियां यदि देखने जाए तो ये काफी बड़ा विषय है, परंतु संक्षेप में यदि कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के 2 प्रकार के विस्तार होते हैं या 2 प्रकार के अंश होते हैं। भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं अंशों के रूप में, वो है स्वांश और दूसरे हैं विभिन्नांश। स्वांश मतलब स्व अंश, भगवान के जितने भी विष्णु रूप हैं जो भगवत तत्व के श्रेणी में आते हैं, विष्णु तत्व के श्रेणी में आते हैं, वो स्वांश कहलाते हैं। सबसे पहले स्वांश हैं बलराम जी, और उनसे फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, विष्णु, राम, नरसिंह, वराह, ये सब स्वांश है। और फिर जितने भी जीवात्माएं हैं हम जैसे, हम सब विभिन्नांश कहलाते हैं, हम विष्णु तत्व के श्रेणी में नहीं होते हैं। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि भगवान का हरेक अवतार स्वांश हो। एक है पूर्ण अवतार जैसे भगवान श्री कृष्ण, और उसमें भी श्रेणियां हैं, और फिर है अंश अवतार, और फिर है आवेश अवतार। ये आवेश अवतार वो हैं अधिकतर जो कि जीव हैं जिनको कि विशेष शक्ति प्रदान की जाती है, इसलिए उनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। कभी कभी ये शक्त्यावेश अवतार विष्णु तत्व भी होते हैं, जैसे कि शेष, अनंत शेष। परंतु अधिकतर ये जो शक्त्यावेश अवतार होते हैं वो ऐसे जीवात्माएं होते हैं जिनमें भगवान की विशेष शक्ति का आवेश हुआ होता है, इसलिए उनको आवेश अवतार या शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। अंश अवतार भी हैं, जैसे कपिल मुनि हैं, दत्तात्रेय हैं, ये सब अंश अवतार हैं। ये भी विष्णु के स्तर में के श्रेणी में आते हैं, परंतु अंश माने जाते हैं। शक्त्यावेश अवतार भी अलग तरह के होते हैं, जैसे जब कोई शक्त जीव को ज्ञान की शक्ति प्रदान की जाती है तो फिर वो उस शक्ति को प्रकट करते हैं, यथा चतुष्कुमार। नारद जी को भगवान ने भक्ति की शक्ति प्रदान कर दी, पृथु महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने प्रजापालन शक्ति प्रदान कर दी, परशुराम को उन्होंने दुष्ट दमन शक्ति प्रदान कर दी। ऐसे विभिन्न विशेष विशेष जीवों को वो तरह तरह के शक्तियां प्रदान करते हैं और उनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, और उनसे कम श्रेणी में जो शक्ति पाते हैं उनको विभूति कहते हैं। तो ऐसे विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है। तो जब सूत गोस्वामी इन 22 अवतारों का उल्लेख कर रहे हैं तो उन्होंने पूर्ण अवतार, अंश अवतार, आवेश अवतार तीनों को मिलाकर बताया है, और आगे चल के वो बताने वाले हैं अवतारा ही असंख्येया हरे सत्व निधेर द्विजाह कि हे ब्राह्मण द्विजाह। वैसे भगवान श्री कृष्ण जो कि सत्व के निधि है या समुद्र है, उनके असंख्य अवतार है। और अब जो मैं अब जिन अवतारों का वर्णन मैंने किया है वो केवल 22 है, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार इतने ही हैं। जैसे समुद्र में लहरें अनंत हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण के अवतार भी अनंत हैं, असंख्य हैं। फिर भी सूत गोस्वामी ने उनमें से 22 प्रमुख अवतारों का नाम लिया है। और उसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब इन 22 अवतारों का उल्लेख होता है तो श्री कृष्ण और बलराम जी, बलराम और श्री कृष्ण 19 और 20 नंबर में आते हैं, फिर 21 नंबर में है बुद्ध देव और 22 नंबर में कल्कि अवतार जो आने वाले हैं कली के अंत में। तो केवल जिस श्लोक में कृष्ण और बलराम का उल्लेख हुआ है उसमें भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है, अन्य श्लोकों में भगवान नहीं कहा गया है। ये अवतार हैं और श्री कृष्ण अवतारी हैं जिनसे समस्त अवतार उत्पन्न होते हैं। और जैसा कि सूत गोस्वामी पहले भी कह चुके हैं कि ये सारे 22 अवतार और अन्य भी क्षीरोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न होते हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु वो अक्षय बीज हैं, दिव्य अक्षय बीज हैं, जिनके द्वारा या जिनके माध्यम से जितने भी भगवान के अवतार हैं वो इस भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं। तो इन अवतारों का स्थान भगवान के धाम में है, परंतु जब इनको इस भौतिक सृष्टि के भीतर प्रकट होना होता है तो वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसलिए क्षीरोदक्षाय विष्णु को ऐसे अक्षय बीज कहा गया है इन अवतारों का। तो अब पिछले श्लोक में ही उन्होंने कपिल देव का वर्णन किया है। कपिल देव इन्होंने सांख्य योग दर्शन का प्रचार किया। आजकल जिस दर्शन को सांख्य कहते हैं वो एक नास्तिक दर्शन है, और इसका प्रचार भी और एक कपिल ने किया था, लेकिन ये कपिल देव नहीं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। ये कपिल देव और वो कपिल देव अलग है। आजकल जो नास्तिक सांख्य सांख्यवाद का प्रचार हो रहा है वो एक नास्तिक कपिल, एक मुनि थे, वो नास्तिक थे, उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। परंतु तो वास्तविक जो सांख्य दर्शन है वो आस्तिक है, वो वेदों पर आधारित है, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर इशारा करता है और स्पष्टीकरण भी करता है। तो कपिल देव जो असली कपिल देव हैं जिन्होंने ये आस्तिक सांख्य दर्शन का प्रचार किया उनका वर्णन श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में आता है। वो कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब ये दोनों सांख्य दर्शन हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के कपिल देव द्वारा जो सांख्य दर्शन का प्रचार हुआ है वो वास्तविक सांख्य दर्शन है। सांख्य ये शब्द आता है संख्या से, संख्या से आया शब्द सांख्य। संख्या मतलब गणना करना, एक मानसिक चिंतन से इस सृष्टि को समझने का प्रयास करना, विश्लेषण करना सारे सृष्टि का, और सृष्टि के विश्लेषण के द्वारा इस सृष्टि के उद्गम क्या है, कौन है, इस निष्कर्ष पे पहुंचना। तो जो नास्तिक सांख्यवाद है वो लोग क्या कहते हैं कि इस प्रकृति के पीछे और कोई कारण नहीं है। परंतु कपिल देव ने श्रीमद् भागवत में बताया है कि ऐसा नहीं है, प्रकृति के पीछे पुरुष है जो भगवान है। तो जैसे सांख्य योग, आस्तिक सांख्य योग का प्रचार कपिल देव ने किया, वैसे ही दत्तात्रेय ने भी सांख्य योग का प्रचार किया। तो इन दत्तात्रेय का वर्णन इस श्लोक में है। तो कपिल देव का सांख्य है और दत्तात्रेय का सांख्य योग है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया वो सांख्य है। तो अलग अलग तरह के सांख्य दर्शन है। तो दत्तात्रेय जिनका वर्णन अब इस श्लोक में किया जा रहा है, उन्होंने भी सांख्य दर्शन का प्रचार किया था। और इनका जन्म कैसे हुआ ये वर्णन यहाँ पे है। अनसूया और अत्रि ऋषि के पुत्र दत्तात्रेय थे। अनसूया का नाम आप सबने अवश्य सुना होगा। पतिव्रता, ब्रह्मांड के पतिव्रता स्त्रियों में से अनसूया अवश्य पहले 5-10 में होंगे। अनसूया का नाम आता है क्योंकि वो बहुत ही पतिव्रता थी। वैसे भगवान के अवतारों की कथाएं जो अलग अलग शास्त्रों में पाई जाती हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर हो भी सकता है। इसका कारण ये है कि भगवान केवल एक बार अवतार नहीं लेते हैं, समय समय पर उनका अवतार होते रहता है। ब्रह्मा जी के हरेक दिवस में कम से कम एक बार भगवान का हरेक अवतार प्रकट होते हैं। इसलिए कभी कभी ब्रह्मा जी के किसी पिछले दिवस की कथा भी एक शास्त्र में कहीं पाई जाती है, किसी पुराण में। और जब हर बार भगवान प्रकट होते हैं या भगवान का हरेक अवतार जब प्रकट होते हैं, तो हो सकता है कि उनके प्राकट्य के तरीके में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए जब हम दत्तात्रेय के प्राकट्य के बारे में थोड़ा अलग अलग वर्णन सुनते हैं ब्रह्मांड पुराण में, श्रीमद् भागवत में, तो इसमें कोई द्वंद्व की बात नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मांड पुराण में ऐसे लीला का वर्णन है कि अनसूया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से प्रार्थना की थी कि आप तीनों आकर मेरे पुत्र के रूप में बनिए। और ये भी इस श्लोक में कहा गया है। तो संक्षेप में इस कथा का वर्णन अब करते हैं और फिर चौथे स्कंद में क्या वर्णन है श्रीमद् भागवत का ही, उसका आगे चल के वर्णन करते हैं। वैसे एक ऋषि थे, ये ब्रह्मांड पुराण की कथा है, जिनका नाम था मांडव्य मुनि। तो एक बार वो अपने आश्रम में बैठ के ध्यान कर रहे थे और वहां से एक चोर गुजरता हुआ गया। तो राजा के सिपाही उस चोर का पीछा करते करते आए और उधर मांडव्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो उन्होंने सोचा कि मांडव्य मुनि उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो वैसे ध्यान में मग्न थे। तो उन्होंने सोचा ये ऋषि बनने का ढोंग कर रहा है और मौन व्रत का ढोंग कर रहा है, लेकिन वास्तव में यही चोर है। गलत था वैसे, लेकिन उन्होंने ऐसे सोचा। तो उसे गिरफ्तार कर लिया और सूली पे चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे और उनका शरीर उस सूली से स्पर्श कर रहा था। ये कथा आगे चल के विदुर जी की कथा से मिलती जुलती है, जिसका वर्णन प्रभुपाद जी आगे चल के भी करेंगे, लेकिन प्रसंग ये नहीं है, इसलिए वो कथा उस दिशा में आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो जैसे वो वहां पे थे तो एक महिला थी जिनका नाम था शीलवती, वो अपने पति को लेकर कहीं जा रही थी। और वो पति ने टोका मांडव्य मुनि को, तो मांडव्य मुनि को क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। अब शीलवती भी बहुत पतिव्रता स्त्री थी और उसने कहा ठीक है, यदि ऐसा है तो कल आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो शीलवती ने कहा कल आएगा ही नहीं, कल आएगा ही नहीं मतलब सूर्योदय होगा ही नहीं। तो अपने पतिव्रता के शक्ति के अपने बल पर उन्होंने सूर्योदय को ही रोक के रखा। अब हलचल मच गया सारे ब्रह्मांड में, अब सूर्योदय नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम। तो फिर सारे देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए, फिर शिलीवती देवी ने किसी न किसी तरह से अपनी वापस कर लिए, और उस समय उन्होंने अनुसुईया देवी की सहायता ली थी। तो अनुसुईया देवी के ऊपर वो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अनुसुईया देवी ने इस समस्या का समाधान करने में मदद किया था। तो उन्होंने पूछा अनुसुईया देवी से कि आप क्या वरदान चाहते हो। तो अनुसुईया देवी ने उस समय कहा जो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, कि यदि आप वरदान देना ही चाहते हो तो आप तीनों मेरे पुत्र के रूप में आ जाओ। तो ब्रह्मा जी आए सोम के रूप में, ब्रह्मा जी के अंश अवतार थे सोम या चंद्रदेव, फिर शिव जी के अंश अवतार थे दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि आप जानते हैं ना, बहुत जल्दी उनको क्रोध आ जाता है और बहुत जल्दी वो प्रसन्न भी हो जाते थे। वो क्यों? क्योंकि वो शिव जी के अवतार हैं, अंश अवतार हैं। शिव जी का एक नाम है आशुतोष, आशुतोष अर्थात आशु मतलब बहुत शीघ्र, तोष मतलब संतुष्ट होना। तो शिव जी बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उतने ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। उसी प्रकार यही गुण उनके अंश अवतार दुर्वासा मुनि में था, और साथ साथ तीसरे भगवान विष्णु के अंश अवतार थे दत्तात्रेय, जिनका उल्लेख इस श्लोक में है। लेकिन श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में वर्णन थोड़ा अलग है। वैसे मनु के वंशावली का वर्णन करते करते वो अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं, वैसे मैत्री मुनि करते हैं विदुर को। तो मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं कि अत्रि अनुसुईया देवी को ये तीन पुत्र हुए, जो ब्रह्मा शिव जी और विष्णु के अवतार थे। तो विदुर जी पूछते हैं कि ये कैसे हुआ कि ये त्रिमूर्ति ऐसे अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, इसके पीछे इतिहास क्या है। तो फिर मैत्र मुनि ने उत्तर देना शुरू किया। वैसे अत्रि मुनि एक प्रजापति थे। इस सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया, उनमें से कई मानस पुत्र थे, 10 मानस पुत्र, जिनमें से नारद मुनि भी एक थे। नारद मुनि प्रजापति नहीं है, वो तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ऐसे अन्य चतुष्कुमार भी, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, लेकिन अन्य ऐसे थे जिनको कि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया आप गृहस्थ बनो और प्रजा की उत्पत्ति करो, क्योंकि सृष्टि का सृजन मैंने किया है, ये 14 भुवन बनाए हैं, लेकिन इनमें रहने वाले तो कोई जीव चाहिए। तो पिछले सृष्टि के विनाश के समय जो जीव अब सुप्त अवस्था में हैं, उनको जागृत करा के उनको रहने के लिए स्थान देना चाहिए, उनको उपयुक्त शरीर मिलने चाहिए, तो आप प्रजा की उत्पत्ति करो, इसलिए उनको प्रजापति कहते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति आदि। उनका नाम था संतान की, उनका काम था संतान की उत्पत्ति करके ब्रह्मांड के हर एक लोक में प्रजा को फैलाना। तो अत्रि मुनि भी ऐसे एक प्रजापति थे। तो जब ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को आदेश दिया कि आप भी प्रजा की उत्पत्ति करो, तो वो अपनी पत्नी अनुसुईया देवी को लेकर ऋक्ष पर्वत के पास गए तपस्या करने के लिए, और वहां पे एक बहुत ही रम्य वातावरण में, जहां पे झरने आदि थे, नदी बह रही थी पास में, बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण था, वहां पे अत्रि मुनि ने तपस्या करना शुरू कर दिया। एक पैर पे खड़े हुए और 100 वर्षों तक ऐसे ही रहे, और उस समय उनका भोजन केवल हवा था, दूसरे शब्दों में कोई आहार नहीं ले रहे थे, न कुछ पी रहे थे, केवल सांस ले रहे थे बस। तो देखिए, पहले जब प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए बताया जाता था पूर्व युगों में, लोग कैसे तपस्या करते थे, इसलिए आजकल भी वैसे कलयुग में तो ऐसी तपस्या संभव नहीं है, लेकिन संतान की उत्पत्ति करने के पहले प्रभुपाद जी बताते थे कि गर्भाधान संस्कार आदि करने की आवश्यकता होती है। इसके पहले कि पति पत्नी एक साथ आए संतान की उत्पत्ति के लिए, ऐसे संस्कार किए जाते हैं जिनमें थोड़ी तपस्या होती है और पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर भगवान की सेवा करके ये निश्चय करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा वो कृष्ण भक्त बने और अच्छे संस्कारों वाला, अच्छे चित्त वाला व्यक्ति बने, कोई राक्षस नहीं बने, असुर नहीं बने, कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं बने, एक बहुत सज्जन बने, एक भक्त बने आपका। तो ऐसे शुद्धिकरण की क्रियाएं किए जाते हैं, ऐसे अनेक संस्कार संस्कारों के बारे में ज्ञान बताया हुआ है शास्त्रों में। दशविध संस्कार, ये 10 प्रमुख संस्कार हैं और ये जन्म के पहले शुरू होते हैं और मृत्यु के बाद तक चलते हैं। जैसे श्राद्ध आदि है, ये अंत्येष्टि क्रिया के बाद भी होते हैं, मृत्यु के बाद भी ये श्राद्ध चलते रहते हैं। उसी प्रकार से ये गर्भाधान संस्कार जो है ये जन्म के काफी पहले से शुरू होता है। फिर गर्भाधान संस्कार के बाद भी समय समय पर अनेक संस्कार होते हैं। जब बच्चा गर्भ में 4 महीने का होता है, 7 महीने का होता है, उस समय भी ये संस्कार करते रहने चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने संक्षेप में उस समय बताया था, क्योंकि विस्तार में उनको करने के लिए समय नहीं था, ऐसे ही कहा कि कम से कम 50 माला जप करना चाहिए, थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। कम से कम हम ये तो नहीं बताया जा रहा है कि जंगल में जाके 100 साल एक पैर पे खड़े होना है, लेकिन पूर्व युगों में देखिए ऐसी तपस्या प्रजापति किया करते थे संतान की उत्पत्ति करने के पहले। वैसे शास्त्र में बताया गया है कि संभोग जो है वो केवल संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, मैं वो काम हूँ या वो संभोग हूँ जो धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। तो जब गृहस्थ आश्रम में संतान की उत्पत्ति के लिए संभोग किया जाता है तो वो पाप नहीं कहलाता है, वो एक धार्मिक कार्य है। परंतु केवल भोग के लिए यदि कोई ऐसे करे तो वो प्रामाणिक नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान ने ऐसे एक योजना बनाई है सृष्टि में, प्रजा उत्पत्ति के लिए एक पद्धति बनाई है, उसका पालन हमें करना चाहिए। जब जीवन में हमें कुछ सुख चाहिए उसके लिए कोई जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि संतान को बड़ा करना यह कोई आसान काम नहीं होता है। आप में से जो गृहस्थ हैं आप जानते हैं कि कितना कठिन होता है बच्चों को जन्म से लेकर, बल्कि उसके पहले से बड़ा करना। बहुत इसमें तपस्या लगती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, मानसिक तनाव भी अनेक तरह के होते हैं। तो ये तनाव के लिए कौन तैयार होगा? तो इसलिए थोड़ी पद्धति ऐसी बनाई है कि उसमें थोड़ा सुख मिलता है। परंतु यदि हम जिम्मेदारी को छोड़ दें और केवल सुख के पीछे जाएं तो यह प्रामाणिक नहीं माना जाता। इसलिए ऐसे श्रीमद् भागवत के उदाहरण में हम देखते हैं कि कैसे जितने भी लोग गृहस्थ बने कैसे वो तपस्या करते थे संतान की उत्पत्ति करने के पहले। तो अत्रि मुनि ऐसे 100 वर्षों तक खड़े रहे एक पैर पे, और अंततः उनकी तपस्या के बल से उनके सर से अग्नि, प्राणायाम के द्वारा अग्नि उत्पन्न होने लगा और ब्रह्मांड के जो प्रमुख देवता गण है वो सब देख रहे थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ऐसे आग बढ़ती जाएगी तो और समस्या हो जाएगी, तो वो चले आए अत्रि मुनि के सामने। तो अत्रि मुनि 100 साल तक थे और अनुसुईया देवी भी उनके साथ में रह रही थी, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि न केवल पति लेकिन पत्नी भी साथ देती थी तपस्या में। तो जब आए उनके सामने अत्रि ऋषि के सामने, अत्रि मुनि ने आंखें खोली, देखा कि तीन, अरे उनको आश्चर्य हो गया, अरे ये कौन आ गए हमारे सामने, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो मैत्री मुनि वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर सवार होकर आए थे और उनके हाथ में कुश घास था। कुश जो कि बहुत पावन माना जाता है, हमारे गोकुल धाम में बहुत लगाया है भक्तों ने कुश। और शिव जी वृषभ अपने नंदी बैल पर सवार होकर आए थे, उनके हाथ में डमरू था। और भगवान विष्णु गरुड़ वाहन के ऊपर सवार होकर आए थे और उनके हाथ में चक्र था, सुदर्शन चक्र। तो पहले कभी अत्रि मुनि ने इनको ऐसे देखा नहीं था, लेकिन अब पहचान पाए उनके चिन्हों से, गरुड़ वाहन, वृषभ, नंदी और हंस वाहन, फिर डमरू, कुश, चक्र, समझ गए कि ये कौन कौन है। पहले उनको विश्वास नहीं हुआ कि कौन आए, मेरे घर में आए हैं, मेरे आश्रम में आए हैं। तो इतने भाव विभोर हो गए कि उनकी ओर दौड़ते हुए आगे गए, लेकिन क्योंकि वो 100 वर्षों से एक पैर पे ही खड़े हुए थे, अब एक पैर पे खड़े होने की आदत हो गई थी, तो एक पैर से ही वो चलते हुए गए उनके पास। और फिर उन्होंने पूरा दंडवत प्रणाम किया। तो ये शब्द दंडवत का भी प्रयोग श्लोक में वहां किया जाता है। फिर प्रभुपाद जी वहां समझाते हैं दंडवत का मतलब क्या है। दंड की तरह है, वत मतलब तरह है, तो दंड की तरह गिर जाना और प्रणाम करना, उसे दंडवत कहते हैं। तो अत्रि मुनि ने दंडवत प्रणाम किया और फिर ऊपर उठे, और इन तीनों का तेज इतना था कि वो देख नहीं पा रहे थे उनको। तो थोड़े समय के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उनका तेज सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मुश्किल से आंखें खोली और बड़े आनंद से उन्होंने देखा कि ये तीन मेरे आश्रम में आए हैं। लेकिन साथ साथ उनके मन में दुविधा भी हो गई, प्रश्न भी उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने तीनों से पूछा कि आप में से किनको मैंने पुकारा है, क्योंकि जब वो तपस्या कर रहे थे, मैत्री मुनि वर्णन करते हैं, शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजाम आत्मसमां मह्यं प्रयच्छात्विति चिन्तयम् इति चिन्तयम्। ऐसे वो सोच रहे थे अत्रि मुनि। क्या सोच रहे थे? शरणं तं प्रपद्यं, मैं आपके शरण में आ गया हूं। किनका? य एव जगत ईश्वरः, हे जगत ईश्वर, आपके शरण को मैं स्वीकार करता हूं। प्रजाम आत्मसमाम मह्यम, मुझे प्रजाम एक पुत्र चाहिए। मह्यम मुझे कैसे होना चाहिए वो पुत्र? आत्मसमाम, आपकी तरह होना चाहिए। तो ऐसे उनकी भावना थी जब वो तपस्या कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था कि प्रजा उत्पत्ति करना है, तब उनको एक पुत्र चाहिए था। तो ऐसी तपस्या करते करते उनके मन में प्रार्थना ये थी कि हे जगदीश्वर, मैं आपके शरण में आ चुका हूं, अब मुझे आपके जैसा एक पुत्र प्रदान कीजिए। अब जगदीश्वर कौन है उनको पता नहीं था, अब ये मूल बात है। उनको इतना पता था कि कोई तो है ईश्वर, सारे सृष्टियों को संभालने वाले कोई व्यक्ति हैं, इस सृष्टि के उद्गम व्यक्ति कोई हैं, कोई तो एक भगवान है, एक परम शक्ति, परम सत्य हैं, इतना वो जानते थे। लेकिन ये कौन है, उनका नाम क्या है, ऐसा स्पष्ट ज्ञान नहीं था। इसलिए ऐसे ही एक सर्वसाधारण भाषा में उन्होंने जगत ईश्वर कह के पुकारा। और ये दशा समाज में अनेकों की है, जो कहते हैं भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान कौन है वो पता नहीं है, स्पष्ट ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं कि अत्रि मुनि को पता था कि कोई भगवान है, परंतु वो भगवान का नाम क्या है, वो कौन है, वो ठीक से नहीं जानते थे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वो उस भक्त की तरह थे जिनका उल्लेख सातवें अध्याय भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, कि चार प्रकार के सुकृतिन होते हैं जो मेरे पास आते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। कृतिन मतलब जो कोई विशेष कार्य करते हैं। तो विशेष कार्य दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। जैसे कोई आतंकवादी है, वो भी जाके कोई बड़ा विस्फोट कहीं करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे उन्होंने वो हवाई जहाज लाके वो बड़े बिल्डिंग में अमेरिका में विस्फोट करा दिया, ये तो बहुत बड़ा कार्य है ना, कोई साधारण कार्य तो है नहीं, कृतिना। लेकिन बुरा काम है इसलिए दुष्कृतिना। और कई लोग हैं जो विशेष विशेष कार्य करते हैं लेकिन अच्छे कार्य, कोई बहुत पुण्यवान कार्य करते हैं इत्यादि, उनको सुकृतिना कहते हैं। तो सुकृतिना और दुष्कृतिना, तो सुकृतनों के बारे में भगवान ऐसे कहते हैं कि चार प्रकार के ऐसे सुकृतन होते हैं, पुण्यवा पुण्यात्मा होते हैं जो मेरे पास आते हैं। वो कौन है? आर्तः। आर्तः मतलब जो बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है, दुख से राहत प्राप्त करने के लिए भगवान के पास आते हैं। अर्थार्थी, जिसको बहुत कोई भौतिक लाभ चाहिए, किसी को कुछ धन चाहिए, किसी को कोई अच्छी पति पत्नी चाहिए, किसी को संतान चाहिए, ऐसे किसी भी भौतिक चीज के लिए भगवान के पास आते हैं। तीसरी बात जिज्ञासु, कोई जानना चाहते हैं, देवी भक्त लोग क्या करते हैं, जब देखें तो सही क्या हो रहा है मंदिर में, चलो चलते हैं, जाते हैं। और ज्ञानी, जो किसी परम सत्य को जानना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट अच्छी तरह से अभी तक पूरा ज्ञान नहीं है, शुरुआत कर रहे हैं। तो ये चार प्रकार के सुकृतिन हैं। वैसे देखा जाए तो ये भक्त की श्रेणी में हैं भी और नहीं भी। भक्त की श्रेणी में इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान के पास आए हैं और भगवान की उपासना करते हैं, परंतु शुद्ध भक्त उनको नहीं कहते हम। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत में भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम उत्तमा भक्ति उत्तमा, कि उत्तमा भक्ति जो प्रथम श्रेणी की भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, वो क्या है? जो श्री कृष्ण के प्रति की जाती है। सर्वप्रथम ये बात है, कृष्ण की भक्ति को ही भक्ति कहते हैं। यदि हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो उसे भक्ति नहीं कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो केवल उपासना हो सकती है, परंतु भक्ति वो है जो केवल परम सत्य भगवान श्री कृष्ण या उनके जो विभिन्न स्वांश अवतार हैं उनके प्रति की जाती है, जैसे राम है, नरसिंह है, ये भी भक्ति है। कृष्ण अनुशीलनम, और ये सेवा करना, क्रियाशील होना भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अनुकूल ये ना, और इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हम भगवान के पास आए हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन मन में अभिलाषा ये है कि हमारा धन बढ़ जाए या हमारे समाज में प्रगति हो इत्यादि। साथ साथ में नहीं हमें कोई ऐसे कामना होनी चाहिए कि मैं निराकार में लीन होना चाहता हूं, दुखों से मुक्त होना चाहता हूं, यह भी सूक्ष्म तरह का स्वार्थ है। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी अनेक चीज कहते हैं, लेकिन इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब भक्त को या उपासक को स्पष्ट ज्ञान होता है कि भगवान कृष्ण है, तब उसकी वास्तविक भक्ति शुरू होती है। यदि उसे पता नहीं है कि भगवान कौन है और वो भगवान की आके सेवा भी कर लेता है तो उसे भक्ति नहीं कहते, उसे सुकृति कहते हैं। अंतर आपने समझ लिया? सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि परम सत्य या व्यक्ति कौन है। जब ये जानेंगे और जानने के बाद फिर हम आके भगवान की सेवा करेंगे, भले हमारे अंदर भौतिक कामना अभी तक क्यों ना हो, लेकिन कम से कम हम जानते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं और उनका शरण ग्रहण करना, उनकी शुद्ध भक्ति करना हमारे जीवन का ध्येय है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में बहुत भौतिक कामनाएं हैं, इनको कृपया आप शुद्ध कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, आपके प्रति शुद्ध प्रेम हमें दे दीजिए। तो हम शुद्ध भक्ति की कामना करते हैं इस स्पष्ट ज्ञान के आधार पर कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, तो हमें भी फिर शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त कहलाना चाहिए। शुद्ध भक्ति के पथ में हम हैं, भले हम प्रेमा भक्ति की अवस्था में स्थित न हो। फिर उस समय हमें मिश्र भक्त कहलाते, मिश्र भक्त क्योंकि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भौतिक, वो हमारी भक्ति की भावना मिश्रित है थोड़ी भौतिक चीजों से। लेकिन जो व्यक्ति सर्वप्रथम यही नहीं जानता स्पष्ट रूप से कि भगवान का नाम क्या है और वह कौन है, तो वो सब कुछ सबकी सेवा करेगा जाके, जैसे भारत में अक्सर होता है, कोई भी उत्सव हो, कोई भी मंदिर हो, वहां जाके कुछ करेंगे। पुण्य आत्मा होते हैं, थोड़ा बहुत सुकृति रहती है कुछ करने के लिए, कर लेते हैं, परंतु वो भक्त नहीं कहलाते, सुकृति न है वो। लेकिन फिर भी जो कृष्ण के पास सुकृति न आएंगे वो महान है, क्योंकि कृष्ण के पास आए हैं। जिसको कोई पैसे की जरूरत है कम से कम कृष्ण के पास आया है, बैंक लूटने नहीं गया है। कोई दुखी है अपने दुखों से मुक्त होने के लिए कम से कम कृष्ण के पास आया है, शराब पी के पड़ा नहीं है या कविता लिखने बैठा नहीं है दुख में। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि अत्रि मुनि शुद्ध भक्त की श्रेणी में नहीं माने जाते थे, क्योंकि उनको स्पष्ट ज्ञान नहीं था कि जगत ईश्वर कौन है। उन्होंने एक सर्वसाधारण एक बुलाया पुकारा भगवान को कि जो भी है वो ईश्वर आप हैं, आपसे मेरी ये प्रार्थना है। और दूसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम अत्रि मुनि को शुद्ध भक्त नहीं मानते हैं, वो कारण ये है कि उन्होंने प्रार्थना की थी जगदीश्वर से कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक सूक्ष्म अंतर करते हैं दो प्रकार की प्रार्थनाओं में से, क्योंकि अत्रि मुनि ने भगवान जैसा पुत्र मांगा इसलिए वो शुद्ध भक्त नहीं कहलाते। यदि वो भगवान चाहते मेरे कि भगवान मेरे पुत्र बने तब वो शुद्ध भक्त के बन जाते। आप समझ रहे हैं अंतर, द्रोण और धरा, आगे चल के फिर माता यशोदा और नंद महाराज बने। उन्होंने जब प्रार्थना की थी ऐसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के आठवें अध्याय में वर्णन है कि उन्होंने प्रार्थना की थी आप आइए मेरे पुत्र, हम पुत्र चाहते हैं लेकिन हमारा पुत्र आप ही हो सकते हैं, आप बनिए हमारा पुत्र। उसी प्रकार से सुतपा और प्रश्नी जो देवकी और वसुदेव बने, वो भी भगवान को ही चाहते थे अपने पुत्र के रूप में, वो शुद्ध भक्त कहलाते हैं। तो जो व्यक्ति चाहता है कि भगवान ही मेरा पुत्र बने, साक्षात भगवान, वो शुद्ध भक्त। लेकिन जो कहते हैं कि भगवान की तरह है कोई भक्त बने, तो फिर वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो फिर भी यदि कोई भक्त सोचे कि चलो फिर ठीक है, हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा पुत्र बने, तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि देखो फिर आपको भी अत्रि मुनि की तरह तपस्या करना होगा, इससे अच्छा ये है साधन भक्ति करो, हरि नाम ले लो और भगवान के धाम में चले जाओ, ये बहुत सुलभ रास्ता है, इसके बजाय कि आप प्रार्थना करो कि भगवान ही मेरा पुत्र बने। ये इस कलयुग में तो भगवान अब पुत्र बन के आने वाले नहीं है, केवल कली के अंत में अब आएंगे कल्की के रूप में। तो इस तरह से जब ये तीनों ब्रह्मा शिवजी और विष्णु उनके सामने आए तो वो थोड़े हड़बड़ा गए, क्या क्या आप तीनों कैसे आ गए। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ के स्वागत किया और फिर पूछा कि ऐसे कृपा करें मुझे ये बताएं कि मैंने आप में से किन को पुकारा था। उनको इतना पता चल गया कि इन तीनों में से कोई तो जगदीश्वर है, अब इन तीनों में से कौन है उनको पता नहीं था। ब्रह्मा है, शिवजी है, विष्णु है, और क्योंकि वो विष्णु है उनके सामने खड़े हैं, वो भगवान है, नहीं पता था तो शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते। परंतु फिर भी अत्रि मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना, ब्रह्मांड के प्रजापति हैं और उनके सामने तीनों ही प्रकट हुए हैं। तो कृपया बताइए कि आप तीनों में से हमने किस किन को पुकारा है। तो प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि ईश्वर कौन है जो भी नियंत्रण करता है। देखिए, छोटे छोटे ईश्वर हो सकते हैं, बड़े बड़े ईश्वर हो सकते हैं, और परम ईश्वर भी हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में छोटा छोटा ईश्वर होता है ना? जैसे अपने घर में एक व्यक्ति घर का ईश्वर होता है, या अपने दफ्तर में जो मालिक होता है वो अपने दफ्तर का ईश्वर होता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने जगह में अपना छोटा छोटा ईश्वरत्व को जमाता है, परंतु वो स्वतंत्र ईश्वर नहीं होता। पहली बात तो है कि उसकी जो नियंत्रण करने की शक्ति है वो लेश मात्र, अणुमात्र होती है। दूसरी बात, वो जितने भी अणुमात्र उसकी शक्ति है नियंत्रण करने की, वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान द्वारा प्रदत्त है वो शक्ति, और भगवान किसी भी समय उस शक्ति को वापस ले सकते हैं। तो छोटे छोटे भी ईश्वर होते हैं। तो जब बड़े ईश्वरों की बात आती है तो देवतागण है, ये भी तो बड़े बड़े ईश्वर हैं। जैसे आप समझिए, देश के मंत्री हैं, ये भी ईश्वर हैं एक तरह के, बहुत शक्ति उनके हाथ में है, उनके एक इशारे से न जाने बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर कल्पना कीजिए, जो ब्रह्मांड के मंत्री हैं उनकी शक्ति कितनी होगी। एक देश के मंत्री की शक्ति इतनी होती है तो ब्रह्मांड के मंत्री की शक्ति कितनी होगी। और ऐसे कितने मंत्री हैं, लाखों मंत्री हैं, देवता हैं, और उनमें से ये तीन प्रमुख हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि महाविष्णु से सारी भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए वो ईश्वर कहे जा सकते हैं। फिर गर्भोदक शायी विष्णु, जो गर्भोदक सागर में शयन करके ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं कमल पुष्प के ऊपर, जिस कमल पुष्प में सारे 14 भुवन भी स्थित रहते हैं, वो भी ईश्वर कहला सकते हैं। फिर क्षीरोदक शायी विष्णु तो सबके हृदय में जाके परमात्मा बनते हैं, वो भी ईश्वर है। और ब्रह्मा जी वो तो सृष्टि करता है, वो भी ईश्वर। शिव जी का स्थान कोई कम है क्या, वो भी विनाश करते हैं सारे सृष्टि का, वो भी ईश्वर है। ये सब ईश्वर है, लेकिन परमेश्वर कौन है। ईश्वर परम है कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, वो अनादि हैं परंतु हर एक वस्तु के आदि हैं, और वो परमेश्वर हैं। केवल ईश्वर नहीं, परमेश्वर, परमेश्वर एक ही है, ईश्वर अनेक हो सकते हैं। तो जब उन्होंने जगदीश्वर कह के पुकारा तो तीनों ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु आए, तो उन्होंने उत्तर दिया। जब उन्होंने गुणगान करना शुरू किया अत्रि मुनि ने, कि आप तीन यहां पर पधारे हैं और आप एक हैं, लेकिन आप तीन रूप में आए हैं, तीन गुणों का आप देखभाल करते हैं, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का निर्देशन करते हुए आप सृष्टि का सृजन करते हैं, लेकिन आप में से किनको मैंने पुकारा मुझे नहीं पता, तो आप ही स्पष्ट कीजिए इस बात को। तो फिर वो कहते हैं कि आपने हम तीनों को ही बुलाया, हम तीनों ही आए हैं, इसलिए आपकी इच्छा पूरी होगी। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की कि आप जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा, हम तीनों जो हैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो जाएंगे। और फिर जाके ब्रह्मा जी के अंश अवतार हुए सोम चंद्रदेव, शिव जी के अंश अवतार हुए दुर्वासा मुनि, और भगवान विष्णु के अंशावतार हुए दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय ये विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं, इनका उल्लेख इस श्लोक में है। और महाराष्ट्र कर्नाटक आदि में और नेपाल में भी कई जगह दत्तात्रेय की उपासना होती है। किसी भक्त ने बताया कि कल दत्त जयंती थी, यहाँ मानते हैं दत्तात्रेय को। ऐसे भी बताया जाता है कि कार्तिवीर अर्जुन ने दत्तात्रेय की उपासना की और उनसे बहुत वर मांगे। जब कार्तिवीर अर्जुन को वर चाहिए था तो वो इधर उधर जा रहे थे, लेकिन ऋषियों ने उनको दत्तात्रेय के पास भेजा कि वो वहाँ पास में है, वहाँ जाओ, वो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो वहाँ गए, उन्होंने तपस्या की, दत्तात्रेय प्रसन्न हुए, उनके पास आए। पर क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ 1000 भुजाएं और साथ साथ कि मैं हमेशा युवक ही रहूं, ऐसी सारी प्रार्थना ने प्रार्थना है कि दत्तात्रेय ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो कार्तिकवीर अर्जुन के भी वो इष्ट थे। साथ साथ में रामायण वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है कि दत्तात्रेय मुनि ने दत्तात्रेय ने रावण को शाप दिया था। एक बार जल शुद्धिकरण करके उन्होंने रखा था पास में अपने तपस्या के पास, जब जहां वो बैठे थे वहीं पे, और रावण ने आके उसे दूषित कर दिया। तो दत्तात्रेय को बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने श्राप दे दिया रावण को कि तुमने जिस प्रकार से ये जल को दूषित किया वैसे ही वानर आके तुम्हारे सर को दूषित करेंगे, तुम्हारे सर पे भी पैर रखेंगे। तो ऐसे उनको श्राप मिला था, ऐसे रामायण में वर्णन है। तो जैसे प्रवचन के पहले भी हम बता रहे थे, दत्तात्रेय ने भी एक सांख्य योग का वर्णन किया है। अनेक मायावादी हैं जो उनके दर्शन को कुछ अलग रख के कुछ उसमें मायावाद कोई अर्थ निकालते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो उनका सांख्य भी श्रीमद् भागवत के कपिल देव के सांख्य योग के तरह ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके कोई प्रश्न है? हाँ, हाँ, तो प्रश्न ये है कि गजेंद्र को भी स्पष्ट ज्ञान, वैसे उन्होंने भी जगत के स्वामी के लिए पुकारा था, लेकिन वहां स्वयं भगवान विष्णु आए थे, और यहाँ अत्रि मुनि ने भी वही की लेकिन तीनों आए, तो ऐसा क्यों अंतर है? वैसे गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे, वो भक्त ही थे और भगवान को ही पुकारते थे। तो जो जिन प्रार्थनाओं को वो कहते थे उस समय, वो उनको भगवान की कृपा से अब याद आ गए। उनको अगस्त्य मुनि के द्वारा एक श्राप मिला था हाथी का शरीर पाने के लिए, तो थोड़े समय के लिए हाथी के शरीर में आकर वो भूल गए ये सब, लेकिन सही समय पर भगवान की कृपा से उनको याद आया। तो उनका ज्ञान था क्योंकि पूर्व जन्म से वो भक्त थे, लेकिन अत्रि मुनि के साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, हाँ, वो केवल तपस्या कर रहे थे, एक पैर पे खड़े हुए ये प्रार्थना कर रहे थे कि जगदीश्वर जो भी है आप, ये मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। उनको पता नहीं था कि भगवान का रूप क्या है, दिखते कैसे हैं, उनका नाम क्या है। अत्रि मुनि को उस समय नहीं पता था ये, केवल ब्रह्मा जी ने उनको कहा था संतान की उत्पत्ति करो, तपस्या करो। तपस्या करना क्या करना, उस समय सत्ययुग था, शुरुआत थी, तो तपस्या ऐसे की जाती थी इस तरह से, जैसे हिरण्यकश्यप ने भी ऐसे किया था ना, हाथ ऊपर करके पैर ऊपर करके, तो उस समय तपस्या ऐसे करते थे। तो अत्रि मुनि ने ऐसी तपस्या कर ली, यद्यपि उनको स्पष्ट ज्ञान नहीं था, फिर आगे चल के भगवान की कृपा से उनको सब पता चला। और कोई प्रश्न? हाँ, एक मिनट माइक।
महाराज, अभी जैसे कि भगवान के अवतार हैं, तो उन अवतारों का कार्य भगवान दत्तात्रेय का?
हाँ, ये सांख्य दर्शन का प्रचार करना, ये दत्तात्रेय का कार्य।
महाराज, इसका कोई वर्णन
है? हाँ,
इसका कोई वर्णन?
हाँ, जैसे हमने कहा, यहाँ यही तो वर्णन इसी श्लोक में है ना, अनुवाद पढ़ते हैं। उन्होंने अर्थात दत्तात्रेय ने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों, यदु है आदि को अध्यात्म विषय का उपदेश दिया। इसी श्लोक में इसका उल्लेख है।
हरे कृष्ण। जगदीश को बुलाने के बाद में जब तीनों आते हैं, तो तीनों अपने आप को जगदीश्वरी समझते हैं?
नहीं, तीनों इस दृष्टि से आए हैं कि अत्रि मुनि को स्पष्ट नहीं है, वो हम तीनों को बुला रहे हैं। वैसे ये सत्य है, ब्रह्मा और शिव जी भी ईश्वर हैं, उनको पता है कि अत्रि मुनि को पता नहीं है, इसलिए वो तीनों आए हैं। और ये भी भगवान की योजना है, तो आखिर ये तीनों आ जाते हैं, तीनों के अंशावतार जो है वो पुत्र के रूप में उनके आ जाते हैं। हाँ, उनको पता, वो तो है ही ईश्वर, लेकिन उनकी शक्ति भी कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। उनको पता है कि हम भगवान नहीं हैं, लेकिन हम ईश्वर हैं। बाहर की दुनिया में लोग भगवान को ईश्वर कहते हैं, हाँ एक दृष्टि से हैं, लेकिन अनेक लोग भी ईश्वर हैं। तो भगवान को कहा जाए तो परम ईश्वर, उनसे श्रेष्ठ कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर मतलब नियंत्रण करता।
हरे कृष्ण। हम लोग तो ईश्वर परम कृष्ण स्वरूप बोलते हैं, पर इन जनरली पूरा भारत देश में यही प्रचलित है, परम ईश्वर मतलब शिव जी।
नहीं, ईश्वर मतलब शिव जी भारत में लोग।
हाँ, फिर उनको परमेश्वर भी बोलते हैं।
हाँ, क्योंकि
जनरली,
हाँ क्योंकि स्पष्ट ज्ञान नहीं है।
और देव में महादेव मतलब शिव जी को ही बोलते हैं।
क्योंकि वैष्णव पंथों ने इतना प्रचार प्रसार नहीं किया है, और वैसे भी अपने अपने मनोवृत्ति के अनुसार कोई लोग शाक्त होंगे, कोई शैव होंगे, कोई वैष्णव होंगे, कोई नास्तिक होंगे। शाक्त मतलब शक्ति की उपासना करने वाले, देवी काली दुर्गा इनकी सब उपासना करने वाले भी लोग होते हैं। जैसे जैसे जिसकी वृत्ति, जिसकी जैसे जैसी मानसिकता है, वैसे वैसे वो उपासना करेगा, तो उस रास्ते में भगवान उनकी श्रद्धा सुदृढ़ कर देते हैं। जो वैष्णव बनता है बहुत ही दुर्लभ है ये, अनेक जन्मों की भक्ति करने, सुकृति प्राप्त करने के बाद ही ऐसे कोई न कोई व्यक्ति भाग्य वाला व्यक्ति भक्त बन सकता है। लेकिन साधारण तौर से हाँ, लोगों को स्पष्ट ज्ञान नहीं है। शिव जी को भी बुला लेते हैं, क्योंकि अपने अपने रास्ते में यदि वो अपने इष्ट को परम नहीं मानेंगे तो श्रद्धा होगी कहां से? किसी की उपासना करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए ना, तो वो श्रद्धा को बढ़ाने के लिए उस तरह के ग्रंथ होते हैं जिनमें उस देवता को परम माना जाता है, ताकि उनकी श्रद्धा वैसे हो। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति, फिर जैसे जैसे वो इच्छा करता है वैसे वैसे उसको मैं अनेक इष्ट प्रदान करता हूँ, देवताओं के प्रति उनके मन में श्रद्धा प्रदान कराता हूँ। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तो जो देवताओं की पूजा करते हैं, श्रद्धा है उनके मन में, तो वो श्रद्धा कहाँ से आती है? भगवान कृष्ण ही देते हैं। भगवान कृष्ण उनके हृदय में स्थित है, और उनके हृदय में स्थित होकर उनको वो श्रद्धा देते हैं। तुम्हारी इच्छा ऐसी है ना, तो ठीक है इस देवता की उपासना करो। तो उस देवता के प्रति सुदृढ़ निष्ठा हो जाती है उनकी, फिर और किसी के पास नहीं जाएंगे। ये भी भगवान द्वारा ही प्रदत्त है। ठीक है, आप अत्रि मुनि के पुत्र, इसलिए अत्रि अत्रि के पुत्र, अत्रेय अत्रि से अत्रेय, जैसे कुंती से कौंतेय, अत्रि से अत्रेय, दत्तात्रेय नाम है।
हरे
कृष्ण।
विभूति अवतार क्या है?
हाँ, विभूति मतलब और कोई अद्भुत कार्य कोई करते हैं, हम समझते हैं कि भगवान ने उसे भी शक्ति प्रदान की है विशेष। कोई भी अद्भुत कार्य करता है, कोई विशेष कार्य कर बैठता है दुनिया में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन बुरा करने की शक्ति भी तो भगवान से ही आती है, उस व्यक्ति की अकेले की नहीं है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो आजकल की दुनिया में, वो भी विभूति कहलाते हैं, विशेष विशेष शक्तियां हैं। हाँ,
हरे कृष्ण महाराज।
हरे कृष्ण
महाराज जी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रार्थना की थी पुत्र प्राप्ति के लिए, तब उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि भगवान आप स्वयं हमारे पुत्र बनिए, लेकिन वो भी तो शुद्ध भक्त
सही है, लेकिन क्यों प्रार्थना की थी पुत्र के लिए?
प्रचार के लिए,
अपने लिए नहीं किया था, कि एक ऐसा पुत्र भेजिए जो ऐसा एक प्रचारक बने जो सारी दुनिया को कृष्ण भक्त बना दे। तो ये भक्ति से संबंधित है, अपने लिए नहीं मांगा उन्होंने।
अत्रि मुनि ने भी तो ब्रह्मा जी के उपदेश के कारण ही तो पुत्र प्राप्ति के लिए।
हाँ, लेकिन भक्ति का दृष्टिकोण नहीं था अत्रि मुनि का, कि मेरा बच्चा आगे चल के ऐसा प्रचार बने कि सारे ब्रह्मांड को भक्त बनाए, शुद्ध भक्त रहे बने, एक शुद्ध भक्त को भेजिए, ऐसे प्रार्थना नहीं की। केवल मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन अच्छा पुत्र चाहिए, कैसा? आप जैसा होना चाहिए। हाँ पूछिए।
हरे कृष्ण। Bhakti is to know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and then we our Bhakti starts. But also we know that real Bhakti starts when we get initiated until that Sukruti is
preached. प्रश्न ये है कि भक्ति और सुकृति में अंतर बताया गया था। सुकृति तब होती है जब हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है कि भगवान कौन है, और फिर भी हम भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जब हम भक्ति करते, हमें यह भी सुना है कि जब तक हम दीक्षा नहीं लेते हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब से हम हमारे अंदर ये ज्ञान हो जाता है, स्पष्ट ज्ञान कि कृष्ण ही परम सत्य है, और हम उनकी हृदय से सेवा करना शुरू कर देते हैं, गुरुजनों का आदेश पालन करते हैं, गुरु परंपरा का, तो वो भक्ति है। और भक्ति का एक अंग यह है अवश्य कि आगे चल के हमें दीक्षा लेनी चाहिए, परंतु दीक्षा लेने के पहले हम तो वही भक्ति करते हैं, वही जप करते हैं, वही कीर्तन करते हैं, वही भागवत गीता पाठ करते हैं, तो वो भी भक्ति है अवश्य, क्योंकि हम आदेश अनुसार ही तो कर रहे हैं। हमने भी तो कहीं से ज्ञान प्राप्त किया कि कृष्ण परम सत्य है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करना चाहिए, तो निश्चित ही ये भी भक्ति ही है। बल्कि ये किए बिना फिर दीक्षा होगी कैसे? दीक्षा के लिए भी कोई योग्यता चाहिए ना, तो भक्ति करके ही तो योग्य हो सकते हैं। ठीक है, आप पीछे माइक निकाल। हरे मूल कारण वही है, लेकिन जिम्मेदार हम हैं।
हरे कृष्ण।
क्योंकि जब तक भगवान अनुमति नहीं देंगे वो कार्य हम संपन्न नहीं कर पाएंगे। किसी को चोरी करनी है, जब तक भगवान अनुमति देंगे वो चोरी नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान ने अनुमति दी इसलिए भगवान दोषी हैं ऐसा नहीं है। दंड मिलेगा तो उसी व्यक्ति को मिलेगा क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार ये कार्य हुआ है। किसी का प्रश्न पीछे एक मिनट माइक आ रहा है।
यदु महाराज को जो अब्दुल ब्राह्मण मिले थे जिन्होंने 24 गुरु के बारे में बताया था, क्या वही रत्नाकर हैं?
ऐसे कहते हैं, से कहते हैं।
हरे कृष्ण। मैंने आपने बताया कि शिरोदक्ष विष्णु से 22 अवतार आते हैं, तो आपने बताया कि 19 और 20 अवतार बलराम जी और कृष्ण आते हैं, तो ये जो कृष्ण आते हैं वो शिरोदक्ष विष्णु से आते हैं कि साक्षात कृष्ण खुद आते हैं?
नहीं, जैसे हम बता रहे थे वैसे जितने भी अवतार हैं उनके अपने अपने स्थान हैं, और कृष्ण और कृष्ण तो अवतार नहीं, वो अवतारी हैं। अवतार इसलिए कहलाते हैं कृष्ण क्योंकि वो उतर के आते हैं, अवतीर्ण होते हैं, इस दृष्टि से वो अवतार हैं। लेकिन जितने भी अन्य अवतार हैं उन सब के उद्गम श्री कृष्ण हैं। तो जब ये कहा जाता है कि क्षीरोदक्षाय विष्णु वो दिव्य अक्षय बीज हैं इन समस्त अवतारों के, इसका अर्थ ये है कि वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु वो द्वार है जिसके द्वारा वो इस भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं। जैसे कृष्ण भी वैसे तो विष्णु के उद्गम है, परंतु जब भौतिक सृष्टि में आना होता है उनके माध्यम से आते हैं, ऐसे आचार्यों ने बतलाया है। ठीक है,
बाकी सारे जो ब्रह्मांड है उसमें भी सब यही
बिल्कुल
इसी प्रोसीजर से ही
है। जो इस ब्रह्मांड में चलता है हर एक ब्रह्मांड में वैसे ही चलता है।
भगवान के जो अवतार यहाँ होते हैं सेम अवतार वहां भी होते हैं।
हाँ, लेकिन भगवान के असंख्य अवतार हैं, तो थोड़ा फेर बदल हो, थोड़ा यहाँ इस समय हो, थोड़ा उस समय हो, ऐसे हो सकता है। लेकिन समस्त अवतार हर एक ब्रह्मांड में यही चलता है, और हमारा ब्रह्मांड केवल एक छोटा सा ब्रह्मांड है, और कई ब्रह्मांड हैं जो बहुत बड़े हैं, हमारे ब्रह्मांड की तुलना से बहुत बहुत ज्यादा बड़े हैं, और इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के परे भी भगवान का धाम है जिसमें अनंत वैकुंठ लोक हैं, जिनके जिनसे भी श्रेष्ठ कृष्ण लोक है जहां कृष्ण रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।